السلام علیکم. آج جمعرات ہے، دسمبر کی 8 تاریخ، پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے پاکستان کا نام مذہبی آزادیوں پر خاص تشویش کے ممالک کے فہرست میں شامل کرنے کے امریکی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ بھارت کو فہرست میں شامل نہ کر کے پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک کا مظاہرہ کیا گیا ہے. امریکی کمیشن کی سفارش کے باوجود بھارت کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت یا کسی اور ملک کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں مقیم مختلف مذہبی کمیونٹیز کو جو تحفظات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے ارشد شریف قتل کیس میں نئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی تشکیل دی ہے. نئی جی آئی ٹی میں انٹر سروسز انٹیلیجنس، انٹیلیجنس بیورو، اسلام آباد پولیس، وفاقی تفتیشی ادارے اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے شامل ہیں. نئی جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جمعرات کو عدالت میں جمع کرا دیا گیا. اسلام آباد پولیس نے عدالت میں بتایا کہ بدھ کو عدالت کی ہدایت پر ارشد شریف کی والدہ کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ضرورت پڑی تو ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے مقدمے میں نامزد ایک اور ملزم کو موت کی سزا سنا دی ہے. ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا ملزم ہے جس کو انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے توہین مذہب کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی ہے. پاکستان میں توہین مذہب کا قانون تضادات اور اعتراضات کی زد میں ہے، مگر انتہا پسند مذہبی رجحانات کے باعث اس قانون کا اثر نو جائزہ یا اس قانون میں ترمیم ناممکن ہے. افغانستان میں طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ سرعام ایک شخص کو موت کی سزا دی ہے. اگست سن 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے کئی مجرمان کو کوڑے مارنے کی سزائیں سنائی گئی ہیں، تاہم سرعام دی جانے والی یہ پہلی سزائے موت ہے جس کا طالبان نے باضابطہ اعتراف کیا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے طالبان کی جانب سے سرعام موت کی سزا پر کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کا یہ اقدام ملک میں انسانی حقوق کی خطرناک خلاف ورزی ہے. اپنے تازہ ترین بیان میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ طالبان انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے انسانی حقوق کے اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے بھی طالبان کے سرعام اقدام کو انتہائی پریشان کن قرار دیتے ہوئے اس کی پرزور مذمت کی ہے. اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے امدادی مشن یا یوناما کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں میں مزار شریف اور جلال آباد میں کم از کم 38 شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام افغان عوام کی حفاظت کریں. یونیما نے ٹویٹ کیا کہ افغانستان میں عوامی مقامات پر حملوں کے حالیہ سلسلے نے شہریوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور ایک گردوارے کو بھی نقصان پہنچا ہے. افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے متحدہ عرب امارات میں متعدد افغان تاجروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کی اور ان سے افغانستان میں معاشی چیلنجز اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات افغانستان میں مشترکہ ترجیحات پر متحدہ عرب امارات کے ساتھ اہم رابطہ کاری جاری رکھیں گے. ان میں لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول میں واپس لانے سے لے کر سرمایہ کاری کو راغب کرنے والی پالیسیوں کی हौसला अफजाई तक जैसे उमूर शामिल हैं। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के असेंबली इंतखाबात में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है। वो मुसलसल सातवीं बार हुकूमत बना रही है। उसे गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात से भी ज़्यादा नशस्तें मिली हैं। वोटों की गिनती अभी जारी है। हतमी नतायज का ऐलान बाद को किया जाएगा। हिजब इख्तलाफ की जमात कांग्रेस की नशस्तें पहले से भी कम हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त का सामना है। वो वहाँ 5 साल से हुकूमत में थी। इस बार वहाँ कांग्रेस की हुकूमत बनती नजर आ रही है। मुबसरीन के मुताबिक सरदस्त ये कहना काबिल अज़ वक्त होगा कि इन इंतखाबात का सन 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात पर असर पड़ेगा कि नहीं। अमरीका की एक अदालत ने बुध को पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी रमेश सनी बलवानी को हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी थेरॉन्स की तरफ से जाली हेल्थ डिवाइस बनाने के जुर्म में 13 साल कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में पैदा होने वाले रमेश बलवानी बाद अज़ां अपने खानदान के हमरा भारत में जा बसे थे, जहां से वो अमरीका मुंतकिल हुए। रवां बरस जुलाई में रमेश बलवानी पर धोखादेही की फर्द जुर्म आयद हुई थी। उन्होंने कंपनी की बानी एलिजाबेथ होम्स के साथ मिलकर यह दावा किया था कि कंपनी ने ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे किसी भी फर्द के खून के चंद कतरों से सैकड़ों बीमारियों को स्कैन किया जा सकता है। बलवानी और एलिजाबेथ होम्स की इस मेडिकल डिवाइस के स्कैंडल को अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली के बड़े स्कैंडल्स में शुमार किया जाता है। एलिजाबेथ होम्स ने बलवानी के साथ मिलकर अमीर सरमायाकारों से तकरीबन $1 बिलियन इकट्ठे किए थे। म्यांमार की फौज ने जुमेरात को कहा कि थाईलैंड के साहिल के करीब एक कश्ती से 150 से ज्यादा रोहिंग्या अफराद को बचा लिया गया है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे ने जनता के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि कश्ती में 106 मर्द और 48 खवातीन सवार थीं और उसे म्यांमार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के तआवुन से चलाए जाने वाले ऑयल रिग के करीब देखा गया था। बयान में कहा गया है कि बुध को देर गए रिग से 2 इमदादी कश्तियां रवाना की गईं। रोहिंग्या मुसलमानों की अक्सरियत म्यांमार में जुल्म व सितम से बचने और बांग्लादेश के पनागुजीन कैंपों से निकलने के लिए हर साल समंदरी सफर करने की खतरनाक कोशिशें करती हैं। एक रोहिंग्या तंजीम के सरबराह ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर म्यांमार में रोहिंग्यास के खिलाफ नस्लकुशी को रोके। बर्मी रोहिंग्या ऑर्गेनाइजेशन यूके के सदर थुन खोन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि म्यांमार के सूबे राखीन में रोहिंग्या मुसलमानों को नस्लकुशी के एक ऐसे सिलसिले का सामना है जिससे उनकी बका को खतरा लाहिक है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक एक दहाई से राखीन में 1,35,000 से ज्यादा रोहिंग्या और कुमान मुसलमानों को मनमाने तौर पर गैर मुयना मुद्दत के लिए हिरासत में रखा गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन में एक लंबी जंग देख रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल मजीद फौजी मुतहर्रिक करने की जरूरत महसूस नहीं करते। पुतिन ने टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले क्रेमलिन में इंसानी हकूक कौंसिल के एक इजलास के दौरान कहा कि हम अपने इख्तियार में मौजूद तमाम ज़राए से अपना दिफा जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने इजलास के दौरान एटमी जंग के खतरे में इजाफे का इकरार करते हुए कहा कि रूस कभी जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी नहीं देगा। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हमारे पास दुनिया के किसी भी जौहरी ताकत के हामिल मुल्क से ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा जदीद जौहरी हथियार हैं। ये एक रोशन हकीकत है, लेकिन हम उनकी नुमाइश नहीं करते। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस से जब पुतिन के ताज़ा बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बराह रास्त जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि हमारे ख्याल में जौहरी हथियारों के बारे में कोई भी गैर मुहतात बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। प्राइस ने कहा कि सर्द जंग के बाद से दुनिया भर की जौहरी ताकतें वाज़ेह तौर पर जानती हैं कि एटमी जंग कभी नहीं होनी चाहिए और ना ही ये जीती जा सकती है। रूस को इस हफ्ते रूस के अंदर और यूक्रेन की सरहद के करीब सैकड़ों किलोमीटर दूर एयर बेसिस और दीगर तंसीबात पर ड्रोन हमलों से नए नुकसानात का सामना करना पड़ा है। कीव हुकूमत ने बराह रास्त इस बात का एतराफ नहीं किया है कि उसने ये हमले किए, लेकिन मॉस्को के फजाई दिफा के कमजोर होने पर तनकीद की है। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जॉन कर्बी ने बुध को कहा कि अमरीका ने रूस के साथ जंग में तौसी के बारे में यूक्रेन के सामने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन वो अमरीका और मगरबी इत्तेहादियों की तरफ से फराहम करदा हथियारों के इस्तेमाल के बारे में फैसला करने में उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए मगरबी हिमायत का उसूली फैसला यूक्रेन की खुद मुख्तारी के हवाले से था और रूसियों के बरक्स हम यूक्रेन की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग जुमेरात को जब सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उनका ये खैर मकदम इस बात का इशारा देता है कि रियाज को अमरीकी तशवीश के बावजूद बीजिंग के साथ ताल्लुकात को गहरा करने में दिलचस्पी है। अमरीकी सदर जो बाइडन का जुलाई में इस्तकबाल इसके बिल्कुल बरक्स था, जब अमरीका सऊदी ताल्लुकात, सऊदी तवानाई की पॉलिसी और जमाल खाशुकजी के 2018 के कत्ल की वजह से बहुत कशीदा थे और इस दौरे में उसका इजहार भी हुआ। अमरीका ने चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और रियाज के साथ उसके ताल्लुकात को देखते हुए बुध के रोज कहा कि ये दौरा दुनिया भर में असर रसूख बढ़ाने की चीनी कोशिशों की एक मिसाल है, तहम मशरक वस्ता के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई की बहन ने ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की मजम्मत की है और पासदारा ने इनकलाब से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया है। फ्रांस में उनके बेटे की तरफ से शाया करदा एक खत में ये बताया गया है। ईरान में रिहाइश पजीर बदरी हुसैनी खामनाई ने दिसंबर सन 2022 को लिखे गए एक खत में इस्लामी जमहूरिया के क्याम से लेकर आज तक उलमा की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की है। उन्होंने लिखा कि वह अब ऐलान करना मुनासिब समझती हैं कि वो अपने भाई के इकदाम की मुखालफत करती हैं और खुमैनी के दौर से लेकर अली खामनाई की जालिमाना खिलाफत के मौजूदा दौर तक इस्लामी जमहूरिया के जराइम पर सोग मनाने वाली तमाम माओं के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करती हैं। ये खत उनके बेटे महमूद मुराद खानी ने बुध को ट्विटर पर शेयर किया। इराक के मकामी हुक्काम का कहना है कि जनूबी इराक में एक ट्विटर पोस्ट की वजह से एक नौजवान इराकी कारकुन के खिलाफ सुनाई गई जेल की सजा के खिलाफ मुजाहरा हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस की एहतजाज करने वाले हजूम पर फायरिंग के बाद दो मुजाहरीन हलाक हो गए। नासरिया शहर में सैकड़ों मुजाहरीन बुध के रोज एक अदालती फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, जिसमें इस हफ्ते 20 साल हैदर हामिद अल जैदी को रियासत की तरफ से मंजूर शुदा मलेशियाओं पर मुबैना तनकीद के इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सिक्योरिटी ज़राए ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की और मकामी हुकूमती ज़राए और एक तिब्बी जरिए के मुताबिक उससे एक शख्स हलाक और 17 जख्मी हो गए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर मेजर जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।